समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं आज ही के दिन जन्मे 1907 में जिनका जन्म हुआ था, हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि हरवंश राय बच्चन की, आज उनकी जयंती है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का परिक्रमा कार्यक्रम। नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें आपके लिए हम लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश कुमार। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित।
President Draupadi Murmu arrives in Coimbatore on the first leg of a visit to Tamil Nadu.
सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
Deep depression over southwest Bay of Bengal progresses to develop into a cyclonic storm, Fingal, by this evening. IMD issues red alert for rain in Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh.
Lebanon mein Israel aur Hezbollah ke beech sangharsh viram lagu.
And Pakistan's main opposition party PTI of Imran Khan ends protests after government arrest hundreds of his supporters. And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today's our topic will be how technologies, artificial intelligence and VFX, that is the visual effects, are becoming a part of the filmmaking process. Well, we start with the famous words of Roman Polanski, who said, "Cinema should make you forget you are sitting in a theater."
जी हाँ, फिल्में साहित्य, रंगमंच, संगीत और सभी दृश्य कलाओं का एक जटिल संगम है। प्रतिष्ठित पैनल में भारतीय फिल्म निर्माता आनंद गांधी, ओपनएआई में सार्वजनिक नीति और भागीदारी प्रमुख प्रज्ञा मिश्रा शामिल थी। इसका संचालन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने किया। शेखर कपूर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ अभी विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि एआई क्या है। हम अभी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी विभिन्न एआई शब्दों की खोज की प्रक्रिया में हैं।
Yes, Mukesh, she further addressed the ongoing debate about AI potentially replacing jobs and shared an intriguing personal experience about his housemate who was able to generate a script for a sequel to Mr. India that impressed him. He compared the situation to the advent of tractors, which were initially thought to replace farmers. But in reality, technology should be seen as a tool to enhance human potential, much like the digital revolution where UPI for payments has become widely adopted, he added.
आनंद गांधी ने फिल्म निर्माण में एआई की बढ़ती भूमिका के बारे में कहा कि एआई जल्द ही फिल्म निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई न केवल सहायता करेगा बल्कि फिल्में बनाने में सह लेखक के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेगा। प्रज्ञा मिश्रा ने प्राचीन ग्रंथों को फिर से बनाने में एआई की क्षमता के बारे में कहा कि पहले से ही हो रहा था। उन्होंने ऐसे उपकरणों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के महत्व पर बल दिया। एआई रचनाकारों को विचारों को आगे बढ़ाने और यहाँ तक कि वित्त पोषण सुरक्षित करने में मदद कर सकता है, जिससे निर्देशकों को अपना काम वैश्विक मंच पर रखने में मदद मिल सकती है।
They also discuss concerns about AI's potential to stifle human creativity. And also, Mukesh, Shekhar Kapoor said, AI has a long way to catch up to human imagination because human imagination is born out of uncertainty, love, fear. But for AI, everything is certain. Kapoor stated, if you have that inertia to stop thinking and outsource everything to AI that is inherent, then and it is a human problem.
प्रज्ञा मिश्रा ने एआई को एक ऐसे उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जो इसे प्रतिस्थापित करने के बजाय रचनात्मक अभिव्यक्ति का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करती हूं कि एआई का उपयोग करके खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एआई मानवीय विचारों को जीवन में लाने में सहायता करने के लिए एक बुद्धिमान सहायक के रूप में कार्य करता है।
Yes, and the session concluded on a positive note with the panel agreeing that while AI can significantly enhance filmmaking, it will never replace the creative capacity of the human mind.
सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार ने 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वीएफएक्स को सिनेमेटोग्राफी के साथ एकीकृत करना विषय पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले इन कन्वर्सेशन सत्र में अपने विचार और जीवन यात्रा साझा की।
Absolutely, Mukesh, and the captivating camera moves, masterful use of vibrant hues, contrasting shadows and evocative lighting in these blockbusters reflect his ability to balance grand visual storytelling with emotional depth, seamlessly blending action, drama and fantasy. Senthil candidly described filmmaking as a challenging process. Filmmaking is full of challenges. If you don't want to face challenges, it's better you don't come to filmmaking, advised the ace cinematographer. He emphasized the importance of embracing these challenges, particularly in the realm of emerging technologies such as VFX, which he sees as a powerful tool that has made the cinematographer's job easier by enhancing visual storytelling.
बिल्कुल अभिषेक, रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वीएफएक्स ने सिनेमाटोग्राफर के जीवन को सुगम बना दिया है और एआई संचालित वीएफएक्स भविष्य के रूप में उभर रहा है। सेंथिल कुमार ने कहा कि फिल्म निर्माण में कोई नियम नहीं है, ये एक रचनात्मक विकल्प और व्यक्तिगत निर्णय है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कहानी कितनी दिलचस्प और ठोस ढंग से बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, मैं प्रौद्योगिकी को अपने कार्यों में एकीकृत करना चाहता हूं और विकसित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एआई संचालित वीएफएक्स ही भविष्य है।
Yes, and Hollywood legendary filmmaker Philip Noy said, "As a director, you are only as good as your script is." He stressed upon the fact that the writer is the backbone of any movie. You have to be kind to your writer. A cohesive and solid script can elevate your movie to a new height. The relationship between a director and the writer is a key factor in any movie. If you can find the right crew and right idea, you can make a great film, said the ace filmmaker.
जी हाँ, प्रसिद्ध अंग्रेजी फिल्म निर्माता और अभिनेता स्टीफन वूली ने फिल्म निर्माता कौन है विषय पर एक ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास को संबोधित किया।
Absolutely, and Stephen Woolley is an English film producer and actor whose career has spanned over 3.5 decades, during which he was awarded the BAFTA Award for Outstanding British Contribution to Cinema in February 2019. As a producer, he has been Oscar nominated for The Crying Game and has produced multi Academy Award nominated films, including Mona Lisa, Little Boys, Michael Collins, The End of the Affair, Interview with the Vampire and Carol, and he runs the production company Number 9 Films with his partner Elizabeth Carlson.
As the grand celebration of cinema enters its 8th day, the festival continues to shine a spotlight on cinematic brilliance from around the world. Over 70 movies are being screened today, including the centenary celebration screening of Tapan Sinha's Harmonium. Various press conferences were also held today. One such was of the International Jury of Feature Film category, chaired by acclaimed filmmaker Ashutosh Govarikar and other members Anthony Shen, Elizabeth Carlson, Fran Borgia and Jill Bilcock on this year's exceptional competition entries. In an exclusive interview with Akashvani, Govarikar expressed his gratitude for this honor. He also lauded the exceptional quality of the 15 films competing in the feature film category, highlighting their unique storytelling and craftsmanship. He said, "Every film offered something extraordinary and is incomparable."
I think my experience was very, very good because this is the first time I've come to Goa to attend the IFFI. Earlier, IFFI, I would always go to Delhi and attend it. Goa is a real vibrant place. The organization over here of the festival, the kind of campus that has been created outside INOX, is, I think, wonderful. There's a lot of excitement, so I'm enjoying that. And it's a huge honor to be heading the jury, and it's a big task. The 15 films that have come in are all brilliant in their own ways. You know, no two films can actually be compared, and you can say that one film is better than the other. The 4 jury members that I had with me were also from various backgrounds, so, and various cultures and countries, so there was a certain point of view each one of them had. But still, somewhere we were all in synchrony with each other. We all arrived on the same choices that we felt. Of course, there were also debates and discussions about the merits of what should get what. But still, that process of being in the jury room with all of them, was a very enjoyable experience, learning experience.
Shifting focus to the innovation, the renowned filmmaker shared his thoughts on Waves OTT, a new platform launched at the festival. He said the platform is designed to bridge nostalgia and contemporary content, allowing viewers to revisit iconic shows of the 90s while also exploring fresh new offerings.
I think it'll be fantastic because there are a lot many shows over the years that have been done on Doordarshan in all the languages, and they're fantastic. Those shows don't get made anymore. So I would say it is retrospective, but even within the retrospective, till now, if you want to see a show that was done in early 70s, I have no access to it. And YouTube is not the only source. With Waves, I think I'll be able to revisit all my favorite shows or explore new ones that have been done in the past. So I think Waves is a fantastic idea that Prasad Bharati is coming.
The renowned filmmaker also shared a piece of advice to the young and aspiring filmmakers to write their own stories, even if they are not a writer. He said, the story must come from within.
Oh, I would straight away say that write your story. Even if you're not a writer, still write your story. Because you have to write it. Because unless it comes from within you, you'll not be able to tell that. So I would tell everyone to first write.
As the festival draws closer to its successful conclusion, excitement builds for the announcement of the winners tomorrow. For Parikrama with Durgesh Bhadauria, Om Vishwapadhyay, Goa.
और परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है. तो अभिषेक, सबसे पहले कहाँ चलें?
Yes, I think we'll start off with a story from Patna, isn't it?
जी हाँ, बिहार चलते हैं. बिहार की राजधानी पटना में कल से 3 दिन तक चलने वाला राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी शुरू हो रही है. इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है. देश विदेश के डाक टिकट संग्रहकर्ता और इसके जानकार लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. तो सुनते हैं ये रिपोर्ट.
फिलाटेली के विशेषज्ञों और डाक टिकटों की दुनिया में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कल से 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में हो रही है. बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसका शुभारंभ करेंगे. बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि यह बहुत बड़ा आयोजन है. इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
बहुत बड़ा आयोजन है. 28, 29, 30 नवम्बर को है. ज्ञान भवन में है. फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है. कोई कॉस्ट नहीं है. और कम से कम 100 से ज्यादा प्रतियोगिताएं उसमें प्रस्तावित हैं. बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं. सबों के लिए बहुत कुछ है और भाग लेकर के ढेर सारा इनाम जीत.
बिहार फिलाटेलिक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को डाक टिकटों की ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रंगारंग दुनिया से परिचय कराया जाएगा. इसके अलावा टिकटों पर आधारित ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा. कार्यक्रम में लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. इस दौरान बिहार के मौर्यकालीन कला, वेद और उपनिषद, मंडन मिश्र शंकराचार्य शास्त्रार्थ पर भी विशेष डाक टिकट आवरण का विमोचन किया जाएगा. परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय.
और बिहार से अब चलते हैं आंध्र प्रदेश. तो अभिषेक, बताएं कि आंध्र प्रदेश से आपके पास क्या खास जानकारी है?
एब्सोल्युटली मुकेश, द नारासापुर क्रोशे लेस क्राफ्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज बीन अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग. This recognition is expected to revive the traditional craft, boost trade and support around 15,000 women artisans in the Godavari region. We have more on this from a correspondent.
The famed Narsapur crochet lace craft has got the geographical indications tag, giving a new lease of life to the dying craft in the Godavari region of Andhra Pradesh. West Godavari District Collector C.H. Nagarani received the GI certificate from the Union Minister of Textiles Giriraj Singh during the closing ceremony of GI and Beyond 2024 on Monday. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry registered the craft in the geographical indications registry on March 1, 2024. Narsapur and Palkol in West Godavari District are the major trade points for lace products. In Konsema region, Razul and Amalapuram are known for the craft. Nearly 15,000 women are directly involved in the craft, producing 3 categories of products made of lace, garments, home furnishings and accessories. The origins of this craft work dates back to 1844. Macrae and his wife from Scotland taught the lace craft to the local women. By the early 1900s, over 2,000 women were involved in the craft in the Godavari region. Managing Director of Andhra Pradesh Handicrafts Development Corporation Limited, Lepakshi, Mr. Balasubramaniam Reddy, expressed his confidence that this craft will earn global recognition with a GI tag. In a release, C.H. Nagarani, Collector, West Godavari District, said that this GI tag would help in promoting the trade and research on the lace craft. Sai Sisla for Akashvani News, Vijayawada.
Yes, from Vijayawada, now we move over to Chandigarh.
जी हाँ, बिल्कुल. बुलंद हौसले और ईमानदार कोशिश हो तो सफलता एक न एक दिन जरूर हासिल होती है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्रीमती कृष्णा यादव ने. तो सुनते हैं हमारे चंडीगढ़ संवाददाता की रिपोर्ट.
कभी सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जी बेचकर घर का गुजारा करने वाली श्रीमती कृष्णा आज गुरुग्राम के बजगेड़ा में अपनी मेहनत और लगन के दम पर चार फैक्ट्री संभालती हैं। उन्होंने 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से हरियाणा मंडपम में एक स्टॉल लगा रखा है। श्री कृष्णा पिकल्स की मालिक श्रीमती कृष्णा यादव बताती हैं कि किसी समय फुटपाथ पर सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करने को मजबूर थी। अक्सर सब्जी बच जाती जिससे काफी नुकसान हो जाता था। तब उन्होंने बची हुई सब्जी का अचार बनाना शुरू किया और उसे भी सब्जी के साथ बेचना शुरू किया। फिर किसी से जानकारी मिलने पर नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में अचार, मुरब्बे, जूस आदि बनाने का प्रशिक्षण लिया। उसने बताया कि शुरू शुरू में ग्राहक अचार खरीदने में आनाकानी करते थे, तो ग्राहक बनाने के लिए अचार के सैंपल मुफ्त देने शुरू किए। अचार की मांग बढ़ने लगी तो आसपास के दुकानदार भी उनके बनाए अचार को रखने के लिए राजी हो गए। श्रीमती कृष्णा बताती हैं कि मांग इतनी बढ़ गई कि गुरुग्राम में एक छोटी फैक्ट्री शुरू की। अचार से शुरू हुई ये कहानी आज 152 तरह के उत्पाद जैसे अचार, मुरब्बे के साथ साथ जूस, जेली, चटनी और जैम तक जा पहुंची है। 550 रुपए से अपना कारोबार शुरू करने वाली श्रीमती कृष्णा यादव अब ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का भी काम कर रही है। उनके साथ वर्तमान में 1000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो न केवल इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका कमा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान कर रही हैं। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है व्यापार जगत की हलचल जानने का।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्सेस टुडे एंडेड इन अ पॉजिटिव टेरिटरी लेड बाय गेन्स इन बैंकिंग एंड ऑटो स्टॉक्स। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स क्लाइम्ब 230 पॉइंट्स और 0.29% टू क्लोज एट 80,234, व्हाइल द एनएसई निफ्टी 50 रोज 80 पॉइंट्स और 0.33% टू सेटल एट 24,275. In the global crude market, Brent crude was trading 0.4%, up at $73.10 per barrel, and WTI crude gained 0.38% to trade at $69.03 per barrel when reports last came in. And after that business news, on to some sports news. In chess, 8-year-old Divit Reddy has won the gold medal at the Under-8 World Cadets Chess Championship in Monte Silvano, Italy. Divit started strong in the championship, winning his first four games. After a brief setback with two consecutive losses, he made a spectacular recovery, triumphing in the final five rounds to clinch the championship title.
और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है कि अपने श्रोताओं को बताएं कि आज के दिन आजादी के सफर में क्या कुछ हुआ था।
In today's episode, we remember freedom fighter and first speaker of Lok Sabha, Ganesh Mavalankar, who was born on 27th of November 1888. As Speaker of the first Lok Sabha of a newborn nation, Mavalankar's role was not merely that of a moderator and facilitator of its proceedings, but of a statesman and a founding father invested with the responsibility to establish rules, procedures, conventions and customs that suited the ethos of India.
Born in Baroda, Gujarat, Mavalankar was a lawyer by profession and also took keen interest in social work, which brought him in contact with eminent national leaders like Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi. He played an active role in the freedom movement in Gujarat and was imprisoned several times and spent nearly 6 years in jail.
Mavalankar dedicated himself to the affairs of Ahmedabad municipality for nearly two decades and was elected to the then Bombay Legislative Assembly representing the city of Ahmedabad in 1937. He was elected to preside over the Central Legislative Assembly in 1946.
Mavalankar was elected to the office of Speaker of the Constituent Assembly Legislative on the 17th of November 1947. And with the adoption of the Constitution of Free India on the 26th of November 1949, Mavalankar became the Speaker of the Provisional Parliament and continued to occupy the office of the Speaker till the first Lok Sabha was constituted in 1952.
During this time, Mavalankar ensured that all the rules, practices, procedures and conventions necessary for the smooth functioning of a representative parliament in the country were put in place before the elections to the first Lok Sabha were completed in the country in 1951-52. No one was therefore surprised when Mavalankar was chosen as the Speaker of the first Lok Sabha of independent India on 15th of May 1952.
During his tenure as a Speaker of Lok Sabha, Mavalankar introduced several new rules and procedures and also modified the existing ones to suit the new conditions. On his initiative, the question hour became a regular and meaningful feature of parliamentary sessions. Devices like short notice questions and half an hour discussions were introduced to make the government truly accountable to the parliament.
The discussion on President's address on a motion of thanks was started by him to ensure independence and supremacy of parliament in the system of government. Mavalankar envisioned an independent secretariat of parliament directly under the control of the presiding officers.
Mavalankar's speakership was cut short abruptly by his untimely death on the 27th of February 1956 in Ahmedabad. Through 5 decades of selfless service, Ganesh Vasudev Mavalankar has left a deep imprint of his personality on the office of the Speaker and on the Parliament of India. We salute this great Indian.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को आज जिनकी पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक शिवमंगल सिंह सुमन को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें 1999 में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं पर हुई और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त कर ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था।
यूजीन ग्लैडस्टोन ओ'नील पास्ड अवे ऑन दिस डे 1953। ही वाज एन अमेरिकन प्लेराइट। हिज पोएटिकली टाइटल्ड प्लेज वर अमंग द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इनटू द यूएस द ड्रामा टेक्निक्स ऑफ रियलिज्म अर्ली एसोसिएटेड विद चेकोव, इब्सेन एंड स्ट्रिंडबर्ग। The tragedy Long Day's Journey into the Night is often included on the list of the finest US plays in the 20th century, alongside Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire and Arthur Miller's Death of a Salesman. He was awarded the 1936 Nobel Prize in Literature. O'Neill is also the only playwright to win 4 Pulitzer Prizes for drama.
और भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान की आज जयंती है। वो इंदौर घराना से संबंधित थे। उन्हें देश में सारंगी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। सारंगी के उस्ताद और हृदय को छूने वाली पिया बसंती रे और अलबेला सजनायू रे सरीखे गीतों को अपनी आवाज देने वाले उस्ताद सुल्तान खान को हिंदी संगीत जगत में विशेष सम्मान दर्जा प्राप्त है। उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से वर्ष 2012 में सम्मानित किया गया।
सोजा क्राजी दुलार लोरी तुझे मैं सुना
Yes, and Bruce Lee was born on this day in 1940. He was a Hong Kong-American martial artist, actor and philosopher. He was the founder of Jeet Kune Do, a hybrid martial arts philosophy drawing from different combat disciplines. Credited with helping popularize martial arts films in the 1970s, Lee is considered by some commentators and martial artists to be the most influential martial artist of all time and a pop culture icon of the 20th century who bridged the gap between the East and the West.
और भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे मोहम्मद अजीज। आज उनका निधन हुआ था और बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में उन्होंने मुख्य रूप से गाने गाए थे। उन्होंने कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। साल 1984 में वो मुंबई आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी जो 1984 में रिलीज हुई थी और मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए गाना गाया था और 80 और 90 के दशक में मोहम्मद रफी का उन्हें उत्तराधिकारी माना जाता था। तो उनका गाया हुआ ये गाना सुन लेते हैं।
सावन के झूलों ने मुझको
Yes, and James.
जी हाँ, अभी उनको हम आगे लेते हैं. खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना भी उन्होंने गाया था, और मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए थे, और उसमें अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे. तो एक और गाना उनका सुन लेते हैं.
Yes, and James Marshall, Jimi Hendrix, born Johnny Allen Hendrix, was born on this day in 1942. He was an American guitarist, songwriter and singer. He is widely regarded as the greatest guitarist in the history of popular music and one of the most influential musicians of the 20th century. The Rock and Roll Hall of Fame describes him as arguably the greatest instrumentalist in the history of rock music. Let's listen in to his hit track, Purple Haze. Yes, and like Mukesh was mentioning in the beginning of the program, Harivansh Rai Bachchan was born on this day in 1907. He was an Indian poet and writer of the Nai Kavita literary movement of early 20th century Hindi literature. He was also a poet of the Hindi Kavi Sammelan. He is best known for his early work Madhushala. And in 1976, he received the Padma Bhushan for his service to Hindi literature.
जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज में हुई, जहां उन्होंने अंग्रेजी कविताओं पर शोध किया. उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर काम किया. उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था, और उनकी जैसे आपने अभी बताया कि मधुशाला काफी प्रसिद्ध रही है, तो मधुशाला को उनके पुत्र अमिताभ बच्चन ने स्वर दिया है, उसको सुन लेते हैं.
अपने युग में सबको वद बुद गात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला. अब न रहे मैं पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला.
Yes, and Vapi Aparesh Lahiri, born Alokesh Aparesh Lahiri, was born on this day in 1952, also known as Bappi Da. He was an Indian singer, composer and record producer. He popularized the use of synthesized disco music in Indian music industry and sang some of his own compositions. He was popular in the 1980s and 90s with film soundtracks. He also delivered major box office success in Bengali, Tamil, Telugu and Kannada films. His music was well received into the 21st century. In 1986, he was recognized by Guinness World Records for recording more than 180 songs in 1 year. Let's listen in to a medley of his hit tracks.
I am a disco dancer.
Yes, Mukesh, and also Sanjana Kapoor was born on this day in 1967. She is an Indian theater personality and former film actress.
जी हाँ, तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर. आप साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.